शिक्षार्थियों, जैसा कि आज का विषय है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, और निश्चित रूप से हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि लोकतंत्र कहते किसे हैं, लोकतंत्र का अभिप्राय क्या है। भारत में लोकतंत्र है, अनेक ऐसे देश और भी हैं जहां लोकतंत्र का दावा किया जाता है, लेकिन लोकतंत्र की कुछ शर्तें हैं। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, और अब्राहम लिंकन का जो कहना था कि लोकतंत्र लोगों का शासन लोगों के द्वारा लोगों के लिए है, निश्चित रूप से है तो यही, लेकिन लोगों के लिए कैसे होगा, लोग शासन कैसे करेंगे, क्योंकि सभी लोग तो शासन में भागीदार नहीं हो सकते। इसीलिए प्रतिनिधियात्मक प्रणाली चुनी गई। लोग चुनाव के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए शासन करते हैं, और माना यही जाता है कि लोगों का अपना शासन है, क्योंकि उनके चुने हुए प्रतिनिधि शासन कर रहे हैं
जी।
लेकिन क्या केवल चुनाव होना, प्रतिनिधि चुनना और उनका शासन करना ही लोकतंत्र है? नहीं, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र को हम केवल शासन व्यवस्था के रूप में ना देखें, बल्कि लोकतंत्र तो एक जीवन पद्धति, एक जीने का तरीका है। हम अपने परिवार से लेकर अपने संस्थान तक, अपने मित्रों के बीच यदि अपना विरोध होते देखते हैं और उसे सह नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं हम में लोकतंत्र की कमी है। लोकतंत्र तभी होता है जब हम अपनी बात कहना जाने, कहना आना चाहिए हमें अपनी बात को, उसके लिए हमें स्टैंड लेना और उसके लिए हमारे पास उपयुक्त शब्द होने चाहिए, और दूसरी ओर हमें विरोध को सहना भी आना चाहिए। हमारा कोई विरोध करे और हमें बर्दाश्त ना हो, तो फिर ये लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है, जीवन जीने का तरीका नहीं है। आप अपने घर में भी हैं
जी,
और अगर आपको कोई निर्णय लेना है और आप कहें कि मैंने कह दिया ना, तो ये लोकतंत्र की पहचान नहीं है। लोकतंत्र तो तभी होगा जब अपने बच्चों से भी सलाह करें, अपनी पत्नी से भी पूछें और पत्नी आपसे पूछे, सभी मिलकर निर्णय लें, तो लोकतंत्र होता है। ये जीने का तरीका इसीलिए कहा जाता है। तो पहली बात कि अपनी बात को कहना आना चाहिए, दूसरी बात विरोध को सहना आना चाहिए, तीसरी बात हमें सबके साथ रहना आना चाहिए। वो किसी तरह के भी लोग हो, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, क्षेत्र अलग हो, लेकिन अगर हमें उनके साथ रहने का अवसर मिलता है तो हमें इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हमें उसमें भी कष्ट होता है तो फिर वही बात कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हमारे भीतर कमी है। और इन तीन चीज़ों के बाद जो अंतिम बात है कि हमें मुख्य धारा में बहना आना चाहिए। जो मेन स्ट्रीम है, जो बहुमत का निर्णय जब कभी कहीं भी कैसा भी हो जाता है, तब अगर हमें उसके साथ चलना नहीं आता तो फिर भी लोकतंत्र में हमें दूसरों के साथ रहने का सलीका आना चाहिए। हमें अपनी बात ही मनवाने की जिद क्यों हो? क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ यही है कि सबको अपनी अपनी स्वतंत्र राय रखने का हक है। जब स्वतंत्र राय रखने का हक है तो उन्हें उस तरह से सोचना, उस तरह से अपनी बात को कहने का भी हक है,
होना चाहिए।
और यस, हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी बात ही नहीं, दूसरे की बात भी अगर गलत है तो उसका विरोध करना भी हमें आना चाहिए। बस इतना काफी है, हम विरोध करें वो सहें, वो विरोध करें हम सहें, तो निर्णय हो जाते हैं। तो लोकतंत्र ये एक जीवन पद्धति को मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र जीने की एक कला है, जीने का एक तरीका है। लेकिन लोकतंत्र को केवल हम जीने के तरीके रूप से नहीं, इसको अगर हम देखें फैलाकर, तो शासन व्यवस्था के रूप में, एक राज्य के रूप में, सामाजिक व्यवस्था के रूप में, आर्थिक व्यवस्था के रूप में, संस्कृति के रूप में, कितने इसके पहलू हैं। सभी जगह पर लोकतंत्र का अगर जिसे कहना चाहिए स्थापना है, तब वास्तविक लोकतंत्र है। आपकी आर्थिक नीतियों में लोकतंत्र नहीं।
सर, आपने आप इसको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर
मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है, लेकिन लोगों को जो आर्थिक समानता अर्थात समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, अगर उसमें भेद है तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था तभी लोकतांत्रिक होगी जब उसमें आर्थिक अधिकार, समान काम समान लोगों के लिए, और वेतन भी अगर मिलता है तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर क्यों हो, और ख़ासतौर से ऐसी व्यवस्था में जहाँ लोकतंत्र है वहाँ इस प्रकार का अगर भेदभाव किया जाएगा तो लोकतंत्र नहीं होगा। सेम इज़ द केस विद कल्चर। संस्कृति के मामले में भी ऐसा है, मेरी भाषा अलग है, आपकी भाषा अलग है, मुझे अपनी भाषा बोलने का अधिकार है, उसे अपनी भाषा बोलने का, तो हमारे पास अपनी भाषा को सीखने के लिए स्कूल में व्यवस्था होनी चाहिए, और यही लोकतंत्र की पहचान है कि अगर कुछ लोग एक क्षेत्र के अलग तरह की भाषा सीखने चाहते हैं तो उनके लिए उसको सुविधा होनी, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों में भी दिया है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार में दिया हुआ है। तो लोकतंत्र में केवल केवल बहुमत का ही ध्यान रखा जाता हो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूँगा कि लोकतंत्र में जहाँ हम अपने शासकों को एक नियत अंतराल के बाद बदल सकते हैं, एक निश्चित अंतराल के बाद बदल सकते हैं, वहाँ दूसरी बात ये भी है कि लोकतंत्र में हर अल्पमत को कभी ना कभी बहुमत का सुख भोगने का मौका मिलता है। अगर अल्पमत वाला सारी आजीवन अल्पमत के ही सुख भोगेगा, अर्थात उसके साथ अल्पमत जुड़ा है और उसकी बात कोई मानता ही नहीं है, तो फिर तो वो लोकतंत्र में दम घुटने के अलावा क्या महसूस करेगा। तो हर व्यक्ति को कभी ना कभी बहुमत का भी सुख प्राप्त होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र की पहचान है, ये नहीं कि कोई कम संख्या में तो उसकी आवाज सुनी ना जाए, ऐसा नहीं होता। कम संख्या में है, अल्पसंख्यक है, उनकी आवाज भी सुनी जाएगी, दलित दमित और जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी आवाज भी सुनी जाएगी, और जो लोग बहुसंख्यक हैं उनकी आवाज को दबाया नहीं जाएगा, लेकिन उन्हें इस प्रकार से जरूर तैयार किया जाता है कि सबको साथ लेकर चला जाए। लोकतंत्र में यही, और यही लोकतंत्र की पहचान है। मुझे लगता है कि चुनौतियों से पहले हम ये देखें कि लोकतंत्र की शर्तें क्या हैं। जैसे कुछ राजनीतिक शर्तें हैं, राजनीतिक अधिकार सबको एक समान प्राप्त होने चाहिए, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको होना चाहिए, सबको अपना अपना प्रतिनिधि, इसीलिए सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार दिया गया। और भारत के लोकतंत्र का ये खूबसूरत पक्ष है कि हमारे यहाँ जितने भी सत्ता परिवर्तन हुए हैं आज तक, सब बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में लोगों ने अपनी राय को रखा नहीं है। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत निरक्षरता रही है इसलिए लोगों को बहकाया जा सकता है, लेकिन अगर आप संदर्भ देखें, एमरजेंसी के तुरंत बाद जब चुनाव होता है तो लोग अपना निर्णय कितने स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि हमारे अधिकारों का यदि हनन होता है तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। और वही ढाई साल बाद फिर जब देखते हैं कि जो सरकार आई है ये भी कोई बहुत हमारा कल्याण कर नहीं रही है, तो फिर उसी को दोबारा लौटा कर ले आते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारा मतदाता जागरूक है, वो समझता है कि उसका हक हित कहाँ सुरक्षित है, और उस हित के लिए वो कुछ भी कर लेता है, और उसे लोकतंत्र में ही स्वीकार किया जा सकता है। और ये राजनीतिक शर्त में यही एक शर्त है कि जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है, विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है। विधायिका का अर्थ समझा दूं, मतलब जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं वो प्रतिनिधि विधायिका कहलाते हैं, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल उनके पास है। और कार्यपालिका सरकार का वो तंत्र है जो उन बनाए हुए कानूनों को लागू करता है, उनसे पालना करवाता है। लेकिन कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। आप कोई भी निर्णय जिसे लागू करवा रहे हैं उसे किस तरीके से करवा रहे हैं, क्या वो लोकतांत्रिक पद्धति से पालन कर रहे हैं या आप तानाशाही तरीके से उसको लागू करवा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन जो है वो भी लोकतांत्रिक ढंग से ही होना चाहिए। इसलिए कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए और न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। ये शर्त है। एक निश्चित संविधान होना चाहिए देश का जिसके अनुसार सभी जो भी ये संस्थाएं हैं, कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका, अपना अपना काम करें, परस्पर एक दूसरे के प्रति जवाबदेह हों और लोगों का हित सत्ता रहे। तो ये लोकतंत्र की राजनीतिक शर्त है। इसी प्रकार से लोकतंत्र की सामाजिक और आर्थिक शर्तें भी हैं। लोकतंत्र अगर है तो जैसे मैंने अभी कहा कि सबको काम मिलना चाहिए, सबको भोजन मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान जिसे कहते हैं, अगर वो हम सबको नहीं दे पाते तो कहीं ना कहीं हमारा आर्थिक पक्ष कमज़ोर है और वो लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। लोकतंत्र तभी सफल और सक्षम होगा जब लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होंगी। मैं ये नहीं कहता कि सबको एक सा मान लेगा, कभी एक सा नहीं मिलता, और वो समानता कभी ऐसी हमें कल्पना भी नहीं करनी चाहिए कि सभी एक से हो जाएंगे, लेकिन हाँ, समानता का अर्थ है कि जितना हम काम करते हैं, जो अब सबके लिए समान कानून हो पहली बात तो ये, और सबके साथ समान व्यवहार हो, और सबको समान अवसर मिले। ऐसा भी गलत है कि अवसर सबको बराबर ना मिले, क्योंकि ये भेदभाव हो जाएगा। तो सबके लिए समान कानून, सबको समान अवसर और सबके साथ समान व्यवहार, अगर ये चीजें सुनिश्चित हो जाएं तो आर्थिक पक्ष में भी यही चीजें चाहिए, तो हमारा सामाजिक भी और आर्थिक दोनों पक्षों की शर्तें पूरी होती हैं, तो ऐसी शर्तें जिस देश में लागू होंगी वहाँ लोकतंत्र होगा
जी।
और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहाँ अमेरिका आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, सशक्त लोकतंत्र माना जाता है, वहाँ भारत भी किसी दृष्टि से उससे कम नहीं है। यहाँ लोकतंत्र अपने सभी पड़ोसी देशों के लोकतंत्र से ज़्यादा मजबूत है। हम पड़ोस के कई देशों को उदाहरण दे सकते हैं, नाम लेना उचित नहीं रहेगा, जहाँ पर लोकतंत्र का ढोल तो पीटा जाता है लेकिन होता क्या है वो सबके सामने है
जी।
तो उस दृष्टि से भारत में जो लोकतंत्र है वो सफल भी है, सार्थक भी है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती जा रही हैं, और यहाँ कोई भी अब शासन व्यवस्था आए इस लोकतंत्र को, लोगों के अधिकारों को, लोगों के हितों को छीन नहीं सकती, ऐसा निश्चित है। निश्चित रूप से जहाँ हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत में लोकतंत्र बहुत सफल है और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, तो भी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि बहुत सी चर्चाएं, बहुत सी समस्याएं इस देश में देखने को मिलती हैं। और मैं ये समझता हूं कि कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जहां समस्याएं ना हों
जी,
क्योंकि समस्याएं ही चुनौतियां बनकर आती हैं और उन्हीं हल करने का ही प्रयास कहीं शासन व्यवस्था का काम होता है। तो भारत में अगर हम देखते हैं जहाँ हमारा मतदाता बहुत जागरूक है, अपने अधिकारों को पहचानता है, मत का अर्थ भी जानता है, महत्व भी जानता है, उसके बावजूद भी अगर हम ध्यान से देखें तो भारत में एक बहुत बड़ी चुनौती तुरंत उपस्थित हुई जब चुनाव पहले हुए, निरक्षरता की। उस समय मतदाता इतने पढ़े लिखे नहीं थे, चुनाव प्रणाली को सार्थक बनाने के लिए पहले जो हमारे चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, ऐसी व्यवस्था जिससे लोग अपने मत का सही इस्तेमाल कर सकें। पढ़ना नहीं जानते थे इसलिए नामों के आधार पर नहीं हो सकता था, तो चुनाव चिन्ह बनाए गए, चुनाव चिन्हों को देखकर कि मुझे इसको वोट देना है, लोगों ने अपना मतदान किया। तो निरक्षरता उस समय तो ये हालत थी कि भारत में 1951 में 19% साक्षरता थी और महिलाओं की स्थिति तो और भी ख़राब थी, वो केवल 9% साक्षर थी। लेकिन तब से निरंतर साक्षरता पर जोर दिया जा रहा है, हर जगह पर नए नए विद्यालय खोलकर जिसे कहना सार्वभौमिक शिक्षा का अधिकार, अब जो राइट टू एजुकेशन दिया उसका अर्थ भी कहीं यही है कि सबको विद्यालय लाया जाए और उन्हें साक्षर बनाया जाए। साक्षर बनाने से केवल मतदान का महत्व नहीं पता चलता, साक्षर बनाने से आप जागरूक होते हैं, आपको अपने इर्द गिर्द की परिस्थितियों के बारे में पता लगता है, आपको अपने दायित्व, अपनी जिम्मेवारियां और अपने अधिकार, इनके बारे में ज्ञान होता है, और इसके बाद इस बात का भी ज्ञान होता है कि मेरे अधिकार तो ये हैं लेकिन इन अधिकारों को पूरा करने के लिए सरकार की क्या जिम्मेवारियां हैं, सरकार का क्या दायित्व है, हमारी उससे क्या अपेक्षाएं हैं, और वो अपेक्षाएं सरकार अगर पूरी नहीं करती तो हम कौन से दरवाजे हैं जहां पर जाकर दस्तक दे सकते हैं और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा जो जागरूकता है ये साक्षरता के बिना नहीं आ सकती। हम अपने संविधान के बारे में सुन लें कि संविधान है लेकिन उसे पढ़ नहीं पाएं तो शायद हमें जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, जो अपना एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, हम अनुभव नहीं कर सकते कि हमारे संविधान में क्या क्या लिखा है। तो इसलिए साक्षरता एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे लोकतंत्र को बहुत मजबूत किया जा सकता है, और इस दृष्टि से सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, निरंतर साक्षरता बढ़ रही है। इस समय ये लगभग 75% से ऊपर जा चुकी है साक्षरता की दर। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे साक्षरता बढ़ती जाएगी, जागरूकता बढ़ती जाएगी, और जब जागरूकता बढ़ेगी, मतदाता अपने अधिकारों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति, सरकार के दायित्वों के बारे में, सरकार के कर्तव्यों के बारे में जान पाएगी, तो जो इंट्रैक्शन है, जो एक दूसरे के बीच में एक दूसरे के साथ व्यवहार है, उसमें भी मजबूती आएगी और लोकतंत्र अधिक मजबूत होगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है लेकिन इस पर काबू पाया जा रहा है, निरंतर इसके लिए प्रयास हो रहे हैं, और जो अब ये शिक्षा का मौलिक अधिकार दे दिया गया है इससे भी बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला है। बहुत से लोगों को निशुल्क शिक्षा से लाभ हुआ है, हालांकि हमारे संविधान निर्माताओं ने तो रेक्टिव प्रिंसिपल में उसी समय दर्ज कर दिया था कि 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन आज वो व्यवहारिक रूप में सब जगह दिखाई देती है। 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा पर किसी को कुछ पैसा खर्च करना नहीं पड़ता, सारा खर्चा सरकार वहन करती है, आपके यूनिफॉर्म से लेकर, आपकी पुस्तकों से लेकर, आपको जो लेखन सामग्री चाहिए वो सब सरकार देती है। तो इस साक्षरता पर बहुत बड़ा काम हो रहा है और एक चुनौती जो भारत के सामने थी वो धीरे धीरे समाधान को प्राप्त कर रही है
जी।
दूसरी एक बहुत बड़ी चुनौती जो लोकतंत्र को प्रभावित करती है वो है गरीबी। निश्चित रूप से जो व्यक्ति गरीब होता है वो थोड़े से लालच में भी अपना मत बदल सकता है, अपनी राय बदल सकता है, अपने विचार बदल सकता है। और इसलिए गरीबी अभिशाप कही जाती है क्योंकि व्यक्ति बहुत लाचार होता है और उसमें स्वाभिमान भी और कहीं यूं कहना चाहिए कि विश्वास की भी कमी होती है। और ये गरीबी हमारे देश में बहुत समय तक रही है। अब भी हम सभी को गरीबी से मुक्त कह दें ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी गरीबी से रेखा से नीचे बहुत लोग हैं जिनको रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा, आज न्यूनतम आवश्यकताओं में शिक्षा भी जुड़ गई है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि शिक्षा तो सबको मिलनी ही चाहिए। अगर शिक्षा नहीं मिलती, रोटी कपड़ा मकान मिले तो भी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। इसलिए ये तीनों चारों चीजें जब मिलने लगेंगी तो लोगों में विश्वास बढ़ेगा और लोग सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेना चाहेंगे। आज क्या है, हम बहुत जगह सुनते हैं कि बाहुबल का प्रयोग किया गया, बहुत जगह सुनते हैं धन बल से लोगों के वोट खरीद लिए गए। आखिर ऐसा क्यों है? गरीबी इसके पीछे कारण है। और जब आदमी गरीब होता है तो उसकी और भी मजबूरियां होती हैं, उसको पोषण ठीक नहीं मिलता और जब पोषण ठीक नहीं मिलेगा तो स्वस्थ नहीं होगा और स्वस्थ नहीं होगा तो देश का ही स्वास्थ्य कमजोर होगा। अब गरीबी एक पक्ष तो उसका अपना निजी पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष पूरे देश पर देखें, गरीब व्यक्ति जिस देश में हैं वो कुपोषण के शिकार रहते हैं और कुपोषण का शिकार होने से बीमारियां बढ़ती हैं और जब बीमारियां बढ़ती हैं तो खर्चे बढ़ते हैं और गरीबी पर और गरीबी ला दी जाती है। तो इस प्रकार से ये एक दूसरी बहुत बड़ी चुनौती है कि आज कोई भी सरकार हो उसे ये प्रयास करने चाहिए कि हर हाथ को काम मिल सके ताकि वो स्वावलंबी बन सकें। स्वावलंबी बनेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, स्वावलंबी बनेंगे तो उनमें विश्वास भी पैदा होगा और जब विश्वास पैदा होगा तो निर्णय भी स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम होंगे और तब वो धन बल और बाहुबल जिसे हम कहते हैं वो उन्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। ये दूसरी बहुत बड़ी चुनौती आज हमारे सामने है। तीसरी चुनौती भारत में जो रही है, जिस पर अब बहुत बड़ा काम हो रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, वो है लैंगिक भेदभाव की। हमारे यहाँ पता नहीं किस कारण से पुत्रों को बहुत महत्व दिया गया और बेटियों का जब जन्म होता था तो घरों में जैसे कोई ऐसा समाचार आ गया जिसपे दुख प्रकट करना चाहिए कि बेटी हो गई। लेकिन और इसका अंजाम क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या बहुत घटती चली गई। भ्रूण हत्या और जिसे कहना चाहिए कि वो उसे क्या कहते हैं फीमेल फेटिसाइज, इससे सब जो है वो संतुलन बिगड़ गया। जब संतुलन बिगड़ गया तो आखिर जितने पुरुष हैं अगर उसके अनुपात में महिलाएं नहीं होंगी तो व्यभिचार बढ़ेगा, दुराचार बढ़ेगा और कई सामाजिक बुराइयां जो हैं उभर कर आने लगती हैं। और ये जो 2011 में 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियों का अनुपात था, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट है, ये बढ़ रहा है। इससे पहले 927 तक था। उससे पहले अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो 1000 पुरुषों पर 870 स्त्रियों का अनुपात रहा। तो इस तरह का जो असंतुलन है उससे समाज में भी वैमनस्य बढ़ता है, बहुत प्रेम नहीं बढ़ता। तो ये जो स्थिति थी इस पर उभरने के लिए सरकार ने कई नीतियां बनाई हैं और वर्तमान में तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। भ्रूण हत्या को अब अपराध बना दिया गया है, कहीं पर भी आप अल्ट्रासोनिक टेस्ट वगैरह से ये पहले लिंग की पहचान नहीं कर सकते कि पेट में पलने वाला जो बच्चा है उसका क्या लिंग है
जी।
तो इनसे कुछ सुधार हुआ है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जागरूकता पैदा हुई है और अब जो जागरूकता है वो इस प्रकार से भी इतनी बढ़ गई है कि अब बेटियों के जन्मदिनों पर खूब ढोल बजाए जाते हैं, कुआं पूजन किए जाते हैं और गाँवों में भी उन्हें उस तरह से अब स्वीकारा जाता है, दुत्कारा नहीं जाता। तो ये एक परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन भी लोकतंत्र को मजबूत करेगा। लेकिन अगर हम ये देखें, इतनी बात देखने के बाद भी हम देखते हैं कि आज भी महिलाओं की स्थिति राजनीति में उतनी सक्षम और सबल नहीं है जितने पुरुष हैं। आप पूरी संसद में देखिए कितनी महिलाएं हैं, उनकी तुलना में पुरुषों की संख्या शायद 10 गुना है
जी,
तो ये जो असंतुलन है ये भी उनकी अभी कमजोरी को दर्शाता है। लेकिन हाँ, अगर हम देखते हैं आज महिलाएं हर क्षेत्र में, व्यवसाय में भी और नौकरी पेशे में भी पुरुषों के बराबर आने का प्रयास कर रही हैं, और ये एक अच्छा सूचक है, अच्छा जिसे कहना चाहिए चिन्ह है कि आने वाला समय जो है लैंगिक भेदभाव को मिटाने वाला है, वहाँ लैंगिक भेदभाव टिक नहीं पाएगा, ये निश्चित है। इसके अलावा और बहुत सी समस्याएं भारतीय लोकतंत्र में विशेष रूप से हैं। ये बड़ा विविधता वाला देश है, इसमें अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार की जातियां हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, अनेक प्रकार के पहनावे हैं, शक्ल सूरत अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, तो विविधता वाले देश में एकता बनाए रखना ये बहुत बड़ी चुनौती है। और उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जातिवाद उभर कर आता है
जी।
हमारे यहाँ जातिवाद इस कदर उभर के आता है कि उम्मीदवार भी जातियों के आधार पर चुने जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए देखती हैं कि इस क्षेत्र में किस जाति का प्राबल्य है, प्रभुत्व है, उसी के जाति के उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है। ये हमारी सोच में कहीं जातिवाद घुसा हुआ है। इसके बाद यहाँ अगड़े और पिछड़े जातियों के नाम पर बटे हुए हैं, और जब कभी कोई मौका मिलता है संघर्ष के रूप में सामने हिंसा के रूप में उभर कर आ जाता है। तो जातिवाद जो है ये बहुत बड़ी एक बीमारी है जिस पर हमें काबू पाना चाहिए। जब तक अंतर जाति विवाह नहीं होंगे, जब तक व्यवसाय में जाति का कोई बहुत रोल नहीं होगा, क्योंकि जातियों का पूछना भी मिर्ज लगता है कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा देना है।
बिल्कुल,
हमें इससे पार पाना चाहिए। जहाँ जातिवाद समस्या है वहाँ धर्म के आधार पर भी हम बटे हुए हैं। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के विरुद्ध कब हो जाएंगे, कहाँ हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, अनुमान लगाना ही मुश्किल है। धार्मिक जुलूस निकलते हैं, उसी धर्म के जो सहयोगी के रूप में अन्य धर्मों के लोग पानी पिलाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, लोगों को खाने को देते हैं, लेकिन एक पत्थर और दो पत्थर और इससे जो हिंसा भड़कती है फिर वो पूरे संप्रदायों को बांट कर रख देती है। माना ये शरारत कम लोग करते हैं, लेकिन जब करते हैं लोग बट जाते हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है
जी।
हमें सांप्रदायिकता को भी एक खतरे के रूप में लेना चाहिए। अगर सांप्रदायिकता के नाम पर, धर्म के नाम पर हम बटे रहेंगे तो निश्चित रूप से इस देश की एकता कमज़ोर होगी, इस देश का लोकतंत्र कमज़ोर होगा। तो सांप्रदायिकता एक अन्य चुनौती है जातिवाद के अलावा। इसी के साथ अगर हम देखें तो क्षेत्रवाद भी एक चुनौती है। क्षेत्रवाद चुनौती इसलिए है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हम इधर जब देखते हैं तो उस तरह से स्वीकार नहीं करते कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं
जी।
इसी प्रकार से दूसरे इलाकों में दूसरे लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये क्यों भेद है? हमारा क्षेत्र बहुत विकसित नहीं है इसलिए हम नाराज़ हैं, हमारे क्षेत्र में शिक्षा नहीं है इसलिए नाराज़ हैं। ये नाराज़गियाँ लोकतंत्र में चलती हैं। विरोध लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लोगों को अपने विकास के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार भी है, लेकिन क्षेत्र के नाम पर एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र से भिड़ें, ये कहीं लोकतंत्र को बहुत कमज़ोर करने वाला तरीका है। कहीं ना कहीं सरकारी जो विकास होता है जिस पे पैसा खर्च किया जाता है, जो योजना आयोग पहले था, अब तो खैर योजना आयोग नहीं है, नीति आयोग के माध्यम से काम हो रहा है, लेकिन पहले ये निश्चित रूप से संतुलित विकास जहाँ नहीं होगा वहाँ क्षेत्रवाद की भावना पैदा होगी। तो ये दायित्व है सरकार का कि वो विकास को संतुलित विकास के रूप में विकसित होने दे। जब तक संतुलित विकास नहीं होगा तब तक एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के प्रति जो अनाकर्षण है या जो जिसे कहना चाहिए कि द्वेष भाव, वो बना रहेगा। आप दिल्ली को ही विकसित कर दें और बिहार पिछड़ा रहे तो बिहार के लोगों को बुरा लगेगा, बिहार को विकसित कर दें उड़ीसा पिछड़ा रहे उड़ीसा के लोगों को बुरा लगेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि सरकारी दायित्व है कि विकास को संतुलित रूप में पूरे देश में देखा जाए
जी।
और पूरा देश एक इकाई है, ये क्षेत्रों में बटे हुए इसलिए हैं कि प्रशासनिक इकाइयों से मैंने बांट दिया, लेकिन अगर हम देखें तो हमारा राज्य तो एक है, स्टेट तो एक है, तो कहीं भी विकास होगा उसका लाभ अन्य क्षेत्रों को भी मिलेगा। पहले तो ये मानकर चलना चाहिए कि विकास कहीं भी हो उसका लाभ अन्य क्षेत्रों को मिलेगा, लेकिन दूसरी बात यह है कि किसी क्षेत्र को ये महसूस ना हो कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पर सरकारी तंत्र को ध्यान देना होगा। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो हमारे राजनीति में, और सबसे बड़ी अगर आप समस्या की बात करें तो भ्रष्टाचार क्या कम समस्या है? आज हर आदमी यूं कहता है कि सभी दफ्तरों में सभी नेताओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये कहना ही इस बात का द्योतक है कि लोगों में असंतोष है। उन्हें अपने अधिकारी अपने नेताओं से संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये जो असंतोष है, ये जो नाराजगी है, ये जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार का मतलब है जिस तरह का आचरण हमसे अपेक्षित है अगर हम वैसा आचरण नहीं करते और बल्कि वैसा आचरण करने के लिए कुछ चाहते हैं बदले में, तो ये भ्रष्टाचार है। और ये बहुत जगह पर बहुत गहराई से बैठा हुआ है। आज काला धन की जो समस्या लोगों ने इतने समय से झेली है, जिस पर अब कुछ प्रहार किया जा रहा है, या हम यूँ कहें कि जितने भी अधिकारियों के काम करने के तौर तरीके थे उसमें वो समय लगाते थे, इसलिए समय लगाते थे कि उसके बदले में उन्हें कुछ लाभ मिलेगा। आज डिजिटलाइजेशन होने से या कंप्यूटरीकृत होने से ये बहुत सी चीज़ें पारदर्शी होती जा रही हैं और भ्रष्टाचार थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है और हमें नागरिकों को इससे बचाना चाहिए। सरकारी प्रशासनिक तंत्र इतना मजबूत होना चाहिए कि भ्रष्टाचार कहीं पर भी सहन नहीं किया जाए। इसके लिए सख्त कानून बनाए जा सकते हैं, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी हो सकती है। जब आप सिविल कोड बनाते हैं तो उसमें दर्ज होना चाहिए कि कोई भी अगर आपके पास आवेदन आता है तो 5 दिन में 7 दिन में उसका उत्तर देना होगा, अनिवार्य होगा, तो फिर ये भ्रष्टाचार अपने आप धीरे धीरे कम होगा। इसी प्रकार से आज राजनीति में हम देखते हैं, पहले राजनीतिक लोग गुंडों का सहारा लेते थे और फिर बाद में गुंडों ने महसूस किया कि जब हमारी सहायता से चुनाव जीत जाते हैं तो हम खुद ही चुनाव लड़ना क्यों ना शुरू कर दें। और वही हुआ, अपराधी तत्वों ने चुनाव लड़े, वो जीत गए और जीतने के बाद वो सत्ता पे काबिज हो गए। तो कहने का अर्थ है कि राजनीति में अपराधीकरण या राजनीति का अपराधीकरण ये भी एक बड़ी समस्या है और इससे भी देश को मुक्त कराने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिन पर मैंने चर्चा की है। ऐसा नहीं कि यही समस्या है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन ये बहुत प्रमुख समस्याएं हैं जिन पर काम होना चाहिए। निश्चित रूप से समस्याएं और चुनौतियां जूझने के लिए होती हैं
जी।
किसी भी देश के सामने हो या व्यक्ति के सामने हो, अगर चुनौती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए और उसका समाधान निकालना चाहिए। जहां हमने इतनी चुनौतियों को गिना, निरक्षरता, गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये सारी चुनौतियाँ सरकार के समक्ष निरंतर बनी रही हैं, लैंगिक भेदभाव बनी रही हैं। लेकिन स्वतंत्रता के तुरंत बाद से ही इन चुनौतियों को स्वीकारा गया और इनको दूर करने के लिए समय समय पर हर सरकार ने किसी न किसी रूप में कदम उठाए हैं
जी।
ऐसा नहीं है कि किसी सरकार ने इनकी अवहेलना की हो, क्योंकि ऐसी समस्याएं थी जो लोकतंत्र के लिए चुनौती के रूप में थी और उन्हें स्वीकार करके उनको हटाने का अगर काम सरकार नहीं करती तो लोकतंत्र भी उतना सफल और सार्थक नहीं दिखाई देता जितना आज दिख रहा है। सबसे पहली अगर हम देखते हैं कि अगर इन चुनौतियों पर काबू पाना है तो उसके लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार चाहिए। मैं पहले ही कह रहा था कि शिक्षा केवल हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में ही नहीं जागरूक करती, बल्कि शिक्षा हमें अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं के बारे में, इर्द गिर्द के वातावरण के बारे में, हमारी जितनी भी प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं उन सब के बारे में जागरूकता पैदा करती है। कौन से कानून से हमें कितना नुकसान होता है, कौन से कानून से हमें कितना लाभ होता है, ये गणना वही कर सकता है जो शिक्षित हो। और शिक्षित होने से, साक्षर होने से हम पढ़ना लिखना सीखते हैं, लेकिन शिक्षित होने से हम विचारना सीखते हैं और फिर निर्णय लेना सीखते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए और उस पर कदम उठाए गए। जहां मैं बता रहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में निर्देश सिद्धांतों में से शामिल किया गया, वहां सरकारों ने बाद में इसमें किया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निरक्षरता को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बनाया गया और उस मिशन के बाद अब हमारे पास 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सर्वत्र पूरे देश में निशुल्क है। निशुल्क होने का अर्थ ये है, और निशुल्क के साथ अनिवार्य भी है। अनिवार्य का अर्थ ये कि हर बच्चे को स्कूल में आना ही होगा, ये दायित्व उसके अभिभावकों का है कि वो बच्चे को स्कूल तक लाएं। अगर बच्चे को स्कूल में नहीं लाते तो इसके लिए उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को शिक्षा दिलवाने के लिए उनके अभिभावकों को जिम्मेवार बनाया गया है कि वो अपने बच्चों को स्कूल तक लाएं और स्कूल में छठी छह वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का अर्थ है 8 साल. 8 साल का मतलब है कम से कम पहली से लेकर 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा, और ये न्यूनतम शिक्षा है जो सबको मिलनी चाहिए. और 2009 में तो एक और बड़ा काम किया गया कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया. तो इस प्रकार से शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार है, और इसके लिए किसी प्रकार का किसी बच्चे को खर्च करने की आवश्यकता नहीं है. ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो सबको शिक्षा प्रदान करे. इसी प्रकार हम देखते हैं, अगर जो दूसरी समस्या हमने बताई या दूसरी चुनौती जो देश के सामने थी गरीबी की, उसके उन्मूलन के लिए भी बहुत तरह के कार्यक्रम बनाए गए. समय समय पर उन कार्यक्रमों को लागू किया गया. और आप ये देखें कि अगर हम मनरेगा की बात करते हैं तो मनरेगा क्या है? मनरेगा भी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी का अधिकार है कि 100 दिन तक प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को काम मिलेगा. काम मिलेगा तो वेतन मिलेगा. तो इस प्रकार से हमने उनकी गरीबी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो मनरेगा है ये बनाया गया. इसके अतिरिक्त और अनेक योजनाएं न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बल्कि शहरों के लिए भी. आज स्किल डेवलपमेंट पर इतना जोर दिया जा रहा है, तो स्किल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है कि अब लोगों को नौकरियों के लिए पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि स्वयं अपना काम करने में भी सशक्त होना चाहिए. उन पे वो न्यूनतम शिल्प होना चाहिए जिससे वो अपना काम कर सकें और अपने लिए आजीविका कमा सकें, अपने परिवार को पाल सकें. तो ये एक दूसरा प्रयास है जिसके माध्यम से गरीबी को दूर करने का काम किया गया है. इसी प्रकार से जो तीसरी बहुत बड़ी चुनौती हमारे समक्ष थी लैंगिक भेदभाव की, कि हमारे यहाँ लड़कों का पुरुषों का पुत्रों का तो स्वागत किया जाता रहा और लड़कियां होने पर शोक मनाया जाता रहा. उसको दूर करने के लिए सरकार ने सबसे पहले तो कानून बनाया कि कोई भी बच्चे का भ्रूण हत्या
नहीं होगी,
अर्थात अपराध होगा. दूसरा, जितने भी ये क्या टेस्ट करते हैं जो
अल्ट्रासाउंड
वाले, इन सब के लिए बताया गया कि अपने यहाँ एक सर्टिफिकेट लगा के रखेंगे कि यहाँ पर गर्भ में पलने वाले बच्चे की लिंग पहचान नहीं की जाती. ये इसलिए था कि कोई इस लोभ में कि हमें यहाँ से पहचान मिल जाए तो अपराध बना दिया गया उन लोगों के लिए जो लिंग पहचान करवाते थे अल्ट्रासाउंड से, जो ये निश्चित करते थे कि लड़का होगा या लड़की, उन लोगों के लिए. तो इस प्रकार से उसमें कमी आई, अपराध होने के कारण से बहुत कमी आई, और महिलाओं को लैंगिक भेदभाव को और कम करने के लिए स्थानीय सरकारों में 1/3 पदों पर भी और 1/3 स्थानों पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया गया. आप देखें, महिला शक्तिकरण का बहुत बड़ा काम है ये कि जितनी भी स्थानीय सरकारें हैं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, नगर निगम हैं, नगर पालिका हैं, नगर पंचायतें हैं, सब जगह 1/3 पद भी और स्थान भी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. इससे महिलाओं को सशक्त बनाया गया, और जब महिलाएं स्वयं सशक्त होंगी तो निश्चित रूप से वो अपनी पूरी जाति की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगी. तो ये एक काम किया गया. तो इस प्रकार से मिलाकर हम ये देखें कि हमने लैंगिक भेदभाव पर भी काबू पाने का, उस चुनौती को स्वीकार करने का काम किया. अब जहाँ तक क्षेत्रीय असंतुलन की बात है, जिससे क्षेत्रवाद उभरता है, उस क्षेत्रवाद को न उभरे और आपस में सामंजस्य बना रहे, उसके लिए भी हर क्षेत्र के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई. उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों के लिए विकास की योजनाएं बनाई गई. आज नॉर्थ ईस्ट अगर बिल्कुल जिसे कहना चाहिए, जिसमें समस्याएं थी नागालैंड की, मिजोरम की, अगर अब वहाँ समस्याएं नहीं हैं तो उसका कारण और कुछ नहीं है बल्कि विकास है. वहाँ के बच्चे JNU में खूब पढ़ते हैं, वहाँ के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में खूब पढ़ते हैं, आदान प्रदान हो रहा है, आवागमन हो रहा है, हाईवे बनने के बाद, अच्छी सड़कें बनने के बाद, यातायात की सुविधा होने के बाद, वहाँ एयरपोर्ट बनने के बाद लोगों को आना जाना हुआ. जब लोगों को आना जाना होता है तो व्यापार ही नहीं बढ़ता बल्कि संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है. हमारे खाने, अब बताइए नॉर्थ ईस्ट के खाने भारत में अब आप कहीं गली गली जाएं आपको मिल जाते हैं. साउथ के खाना आपको नॉर्थ में, साउथ से भी शायद अच्छा मिलने लगा है. ये जो परिवर्तन आया है ये किस कारण से? क्योंकि लोगों का आवागमन बढ़ा है, संस्कृतियों का अंतर मिश्रण हो रहा है, एक दूसरे के पहचान रहे हैं, एक दूसरे के पास जा रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसके लिए बहुत बड़ा काम किया गया है। तो इससे क्षेत्रीय असंतुलन जब कम होता है, तो मैं आपको थोड़े से प्रोग्राम बताता हूँ कि जनजाति विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। आखिर ये इतने कार्यक्रम जो शुरू किए गए, ये उस क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने के लिए किए गए, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में और जो छोटे राज्य बन रहे हैं, ये भी आप एक ध्यान से देखें, अगर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करने के बाद उत्तराखंड का विकास तेजी से हुआ, क्योंकि वो छोटा है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें, उत्तर पूर्व के जो राज्य थे उनको सेवन सिस्टर्स जो बनाई, जो सात राज्य छोटे छोटे बन गए, इससे वहाँ विकास तेजी से हुआ, क्योंकि छोटी इकाई का विकास करना आसान
है,
तो वहाँ पर भी विकास को तीव्रता मिली। आप अगर आ जाएं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया, बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो कुल मिलाकर जितने भी छोटे राज्य बने, इससे उस क्षेत्रों में विकास तीव्रता से हुआ। और इन सब का उद्देश्य एक ही था कि ये जो असंतुलन दिखाई देता है, जो नाराजगी दिखाई देती है विकास के कारण, उस नाराजगी को भी दूर किया जाए और उस असंतुलन को भी मिटाया जाए। इसी प्रकार से बहुत से प्रशासनिक और न्यायिक सुधार भी किए गए। अगर ये न्यायिक और प्रशासनिक सुधार नहीं होते, तो ये जो सांप्रदायिकता है, जो जातीयता है, जो क्षेत्रीयता है, इसकी जो भड़की हुई हिंसा है, शायद उन पर हम काबू ना पा सकते। तो आज जहां सूचना का अधिकार दिया गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये बहुत बड़ा अधिकार है जो लोगों को सशक्त करता है। सरकार में किस तरह से काम हो रहा है, हमें जानने का हक है कि निर्णय कब लिया, किसने लिया, कैसे लिया, उसका पूरा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूचना का अधिकार के माध्यम से आज नागरिकों के पास ऐसा अधिकार आ गया है कि वो सरकार के किसी भी निर्णय के प्रति पूरी जानकारी या किसी भी कार्रवाई के प्रति पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, और उसके दम पर फिर न्यायिक व्यवस्था में अपना अधिकार या अपने अधिकार का हनन, दोनों पर दावा कर सकते हैं और उसके लिए उन्हें न्याय मिल सकता है। अब देखें, आज इतने वर्षों के बाद भी हम ये कहते हैं कि फैसले लेने में बहुत विलंब होता है। 24 साल बाद तो उन फैसलों को हम सुनने में आ रहे हैं जो कि बहुत बड़ी हिंसा से जुड़े हुए थे, अबू सलेम का मामला हो या और कोई मामला हो, इतने इतने वर्षों के बाद जब निर्णय होता है, तो थोड़ी न्याय व्यवस्था के प्रति भी संदेह उत्पन्न होते हैं कि इतने सालों में अगर निर्णय आया भी सही, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, विलंब से आया हुआ जो न्याय है वो भी न्याय न होने के बराबर है। तो ये भी एक समस्या थी, आज वहां पर भी काम हो रहा है। कुछ ऐसे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं लोकहित याचिकाओं के माध्यम से, जैसे PIL कहते हैं, उसके माध्यम से लोगों की समस्याओं को सीधे सीधे लिया जा सकता है, न्यायाधीश स्वयं संज्ञान लेते हैं। यह भी एक जो केस हुआ है उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लिया कि इसके बारे में हमें जानकारी मिलनी चाहिए कि क्या हुआ है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो पूरे देश में आज हमें दिखाई दे रहा है कि लोगों के अधिकारों का यदि कहीं हनन होता है, तो न्यायपालिका स्वयं उसका संज्ञान ले सकती है और स्वयं उस पर सरकार से जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो कि पहले बहुत अरसे तक देखने में नहीं मिला, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। तो विभिन्न आयोग बनाए गए, बहुत बड़ा आंदोलन चला इस देश में कि ऐसे आयोग बनने चाहिए जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकें, और अंकुश लगाने के लिए अब सरकार को देखो क्या किया है कि कुछ सिफारिशें हैं ऐसी जिन पर हम जिक्र करें कि प्रशासन को उत्तरदायी तथा नागरिकों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शासन संचालन की क्षमता विकसित होनी चाहिए, शासन में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए और सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण ये बहुत बड़ा एक साधन है जो लोगों को लोकतंत्र में सफल बनाने के लिए जरूरी है। अगर एक हाथ में ताकत सिमटती चली जाएगी, सत्ता का जिसे संकेंद्रीकरण कहते हैं वो होगा, तो तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ेगी। लेकिन जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, विकेंद्रीकरण कई प्रकार से होता है, जहाँ संस्थाओं में अधिकार बढ़ते हैं, वहाँ ऊपर से नीचे, जिसे कहना चाहिए कि केंद्रीय सरकार से लेकर स्थानीय सरकार तक भी हम जब बंटवारा करते हैं, एक तो केंद्रीय सरकार के तीन अंग हैं उनमें बट जाए और एक ऊपर से नीचे आ जाए, राज्य केंद्र फिर राज्य और फिर उसके बाद स्थानीय संस्थाएं, तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। और जब सत्ता बहुत से हाथों में पहुंच जाएगी तो निश्चित रूप से फिर ये समस्याएं नहीं रहेंगी। और इसी प्रकार से न्यायपालिका को भी आज बहुत सुधारने की ज़रूरत है। सुधारने का अर्थ ही है कि हमें अधिक जजेस को लगाना होगा, जल्दी फैसले हों। कुछ जो फैसले ऐसे हैं जो कि व्यक्तिगत मामले होते हैं उन्हें आपस में सुलझाया जा सकता है, उन्हें ट्रिब्यूनल्स को सौंप कर उनको आपस में सुलझाया जाए ताकि न्यायालयों पर बोझ कम हो। तो इन सब तरह से, और सबसे बड़ी बात कि नागरिक अपनी जिम्मेवारी को समझें और अपनी भागीदारी को पूरी तरह से सक्रियता से करें, तो फिर लोकतंत्र में ये चुनौतियाँ समाधान में परिवर्तित हो जाएंगी और लोकतंत्र सार्थक भी बनेगा और सफल भी बनेगा।